आज है 15 जुलाई दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूँ सुशीला सिंह। फ्रांस में लोगों की भीड़ में लॉरी घुसी, 70 से ज्यादा लोगों की मौत, लॉरी से असला बरामद। शीला दीक्षित बनी यूपी में कांग्रेस का चेहरा, क्या है चुनौतियाँ?
आवाम और जनता, उसने मायावती की कुछ सरकार को भी देख लिया है और अब सपा की सरकार को भी देख लिया, अब बीजेपी से, इसलिए हम बड़ी जोरों से लड़ेंगे।
भारत प्रशासित कश्मीर में जारी तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान में बड़ी तल्खी, और बेंगलुरु में उम्र को पीछे छोड़ थिरक रहे हैं महिलाओं के कदम। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। फ्रांस के नीस शहर में बास्टिल डे के आयोजन में भीड़ पर एक लॉरी के चढ़ जाने से 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्थानीय अधिकारियों ने इन लोगों के मारे जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि इस बड़े हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लॉरी में बंदूकें और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रोमिनेट इलाके में आतिशबाजी के दौरान ये घटना हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी हैं और सड़क पर इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई, जबकि ट्रक चालक को पुलिस ने गोली मारी है जिससे उसकी मौत बताई जा रही है। दक्षिण सूडान की जूबा शहर से 156 भारतीयों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने यह जानकारी दी। आज सुबह इन लोगों को केरल के तिरुवनंतपुरम वापस ले आया गया है। जूबा में एक हफ्ते से गृह युद्ध चल रहा है जिसमें भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई है और जूबा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जनरल वीके सिंह की निगरानी में किए गए इस ऑपरेशन का नाम संकट मोचन रखा गया था। सभी रिहा कराए गए भारतीयों को दिल्ली लाया जाएगा। जनरल वी के सिंह ने ये बताया।
So far as these 550 people are concerned, when we landed out there, 156 have come out.
जहां तक 550 लोगों का सवाल है, इनमें से 156 लोग हमारे साथ वापस आए हैं। करीब 30 से 40 लोग ऐसे थे जो हमारे वहां पहुंचने से पहले कमर्शियल विमानों में टिकट बुक करा चुके थे। करीब 300 लोग ऐसे हैं जो व्यापार के सिलसिले में वापस नहीं आना चाहते थे। ये थे जनरल वीके सिंह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वहीं मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि दक्षिण सूडान में सुरक्षा बल स्थानीय लोगों को देश छोड़ने से रोक रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक दक्षिण सूडान के नागरिकों को जूबा में हवाई अड्डे और युगांडा की सीमा के पास से वापस भेजा जा रहा है। राष्ट्रपति साल्वा कीर और उपराष्ट्रपति रेक मचार के समर्थक दलों के बीच लड़ाई के बाद गृह युद्ध के खतरे को देखते हुए कई देशों के नागरिकों को दक्षिण सूडान से निकाला जा रहा है। उपराष्ट्रपति रेक मचार राजधानी जूबा से बाहर हैं और उन्होंने बीबीसी को बताया कि अगर कोई तीसरा पक्ष उनकी सुरक्षा की गारंटी दे तो वो वापस आ जाएंगे। अमरीकी मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मॉस्को में सीरिया की लड़ाई में दोनों देशों के साथ आने के विवादास्पद प्रस्ताव पर बातचीत हुई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। फ्रांस के नीस शहर में हुए एक हमले में 70 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये लोग बास्टिल डे आयोजन में भाग ले रहे थे जब एक लॉरी तेजी से आई और लोगों की भीड़ में घुस गई। नीस के एक अधिकारी का कहना है कि ये वाहन इस भीड़ में करीब 2 किलोमीटर तक चलता रहा और फिर पुलिस ने इस ड्राइवर पर गोलियां चलाई। इस लॉरी में से गन और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस बीच आपात बैठक के लिए राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलां पेरिस लौट रहे हैं। पूरा ब्यौरा सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
15 जुलाई का दिन फ्रांस में बास्टिल डे की छुट्टी का दिन होता है। लोग कई तरह के आयोजनों में जमा होते हैं। नीस शहर में बास्टिल डे की मस्ती का अंत शानदार आतिशबाजी के साथ होना था। लोग अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ बड़ी संख्या में नीस के प्रोमिनेट इलाके में जमा हुए थे। خوشی اور اتساہ کا یہ موقع تب ماتم میں بدل گیا جب بھیڑ پر ایک لوری نے حملہ کر دیا۔ بی بی سی کے پروڈیوسر روئے کیلے بھی آتش بازی دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ جیسے ہی میں واپس جانے لگا میں نے لوگوں کی چلانے کی آواز سنی اور دھماکے جیسی کوئی آواز بھی مجھے سنائی دی، لیکن یہ کلپنا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے اور پولیس گھٹنا استھل کی طرف دوڑنے لگی۔ پھر میں نے گولیاں چلنے کی آواز بھی سنی۔ میں نے فرانس کے ٹی وی چینلوں میں جو دیکھا وہ کافی دکھد تھا۔ اس سے پہلے کافی اتساہ کا ماحول تھا، وہاں آتش بازی ہوئی، لیکن ان سب کا انت کافی دکھد تھا۔ روئے کیلی کے شبد۔ اس حملے میں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 100 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ فرانس کے بی ایف ایم ٹی وی سے بات چیت میں آلپس میریٹائم ریجن کے اپراجپال سیبسٹین ہمبرڈ نے حملے میں ہتاحت ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ جانکاری دی۔ مرنے والوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے۔ نیس میں قریب 30 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور قریب 100 لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ ابھی یہ صاف نہیں ہے اور یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کھیتریہ پرمکھ اور نیس کے پورو میئر کرسٹین ایستروسی نے کہا کہ اس واہن میں بندوقیں اور گرینیڈ ملے ہیں۔ فرانس کے بی ایف ایم ٹی وی کو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا حملہ تھا۔ یہ حملہ سوچ سمجھ کر یوجنا بدھ طریقے سے کیا گیا ہے۔ جو بھیڑ میں ٹرک کو لے کر گھس آیا اس نے پولیس پر گولیاں چلائیں اور لوری میں بندوقیں اور گرینیڈ تھے۔ سماچار ایجنسی اے ایف پی کے مطابق فرانس کی آتنک ویرودھی ایجنسی نے معاملے کی جانچ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ فرانس کے راشٹرپتی فرانسوا اولا پیرس میں ایک آپات بیٹھک کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک اس حملے کی ذمہ داری کسی سنگٹھن نے نہیں لی ہے۔ غورطلب ہے کہ پچھلے سال پیرس میں حملوں کے بعد فرانس میں آپات کال لاگو ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی باراک اوباما نے حملے کی نندا کی ہے۔ کناڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو نے بھی حملے کی نندا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کناڈا کے لوگ اس حملے سے صدمے میں ہیں۔ یوروپی آیوگ کے ادھیکش ڈونلڈ ٹسک نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ جو لوگ سوتنترتا، برابری اور بھائی چارے کا جشن منا رہے تھے انہیں نشانہ بنایا گیا، یہ کافی دکھد ہے۔
فرانس میں ایک سماروہ کے دوران حملہ، 70 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکا۔ یہ تھی ہریتا کانڈپال۔
خبر سچ ہے
اگر بی بی سی پر ہے۔
آپ سن رہے ہیں نمسکار بھارت، سشیلا سنگھ کے ساتھ۔ اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ اتر پردیش میں شیلا دکشت کو کانگریس کا مکھیہ منتری پد کا امیدوار بنائے جانے کی گھوشنا کے بعد ایک بار پھر راجیہ میں برہمن ووٹ بینک کی چرچا شروع ہو گئی ہے۔ کبھی کانگریس کا سمرتھک رہا یہ ورگ پچھلے کافی سمے سے راجنیتک نیتتو کے لحاظ سے حاشیے پر چلا گیا ہے۔ یہی نہیں، راجیہ میں متداتا کے طور پر بھی ایک سمے اس ورگ کو مہتوہین سمجھا جانے لگا، لیکن بہوجن سماج پارٹی کی سوشل انجینئرنگ کے سفل پریوگ کے بعد سبھی راجنیتک دل اس ورگ کو لبھانے میں لگے ہیں۔ کیا ہے اس کی وجہ، یہی پڑتال کرتی ہے سمیر آتمج مشر کی یہ رپورٹ۔
تلک ترازو اور تلوار جیسے نعروں کے ساتھ چناوی سمر میں اترنے والی بہوجن سماج پارٹی بھی جب کچھ ہی سالوں میں دلت براہمن گٹھ جوڑ پر اتر آئی تو اس سے براہمن سمودائے میں اپنے راجنیتک پنروتھان کی روشنی دکھی، خاص کر تب جب بسپا کا یہ پریوگ زبردست سفل رہا اور 2007 میں اس نے ودھان سبھا چناؤ میں پورن بہمت حاصل کیا۔ اس کے بعد تو سماجوادی پارٹی سمیت سبھی راجنیتک دلوں نے اپنے یہاں براہمنوں کو مہتو دینا شروع کیا۔ بھارتی جنتا پارٹی کو تو پہلے سے ہی براہمنوں کی پارٹی کہا جاتا تھا۔ مہتو تو ملنے لگا لیکن اس ورگ کے سامنے ابھی بھی نیترتو سنکٹ بنا ہوا تھا۔ ایسے میں جب کانگریس پارٹی نے شیلا دیکشت کو اتر پردیش کے چناوی سمر میں آگے کر دیا ہے تو راجنیتک حلقوں میں یہ چرچا شروع ہو گئی ہے کہ اس لحاظ سے تو کانگریس نے بازی مار ہی لی ہے۔ لکھنؤ میں ٹائمز آف انڈیا کے ورشٹھ پترکار سبھاش مشر کہتے ہیں،
جب کانگریس کمزور ہوئی تو براہمن اپنے سروائیول کے لیے بی جے پی میں شفٹ کر گیا تھا، جب مندر آندولن چل رہا تھا اس کے ساتھ جڑا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو سوروپ بدلتا جا رہا ہے، خاص طور سے اگر ادھر پچھلے رجیم مودی اور امیت شاہ کے رجیم میں دیکھیں کہ وہ لوگ اپنی اپنی بیکورڈ کاسٹ کا بیج لگا کر کے ہر ریلی میں کہ میں بیکورڈ ہوں، اس کی رات پر جاتا ہوں۔ دوسری بات بتاؤں، لکشمی کانت واجپئی کو اتر پردیش کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش کے روپ میں جتنا میں کہوں گا ہیومیلیٹ کر کے ہٹایا گیا، تو ان کارنوں سے براہمن جو ہے بی جے پی سے جو جڑا تھا اب بی جے پی میں بھی تھوڑا اتنا سہج محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اسی موڈ کو براہمن کمیونٹی کے ایک کر کے کانگریس نے یہ ایک جوا کھیلا ہے۔
दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश में मृतप्राय कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर यही सबसे मजबूत कड़ी दिख रही थी, खासकर उस समय जब भाजपा में भी ब्राह्मणों को नेतृत्व के लिहाज से कोई बहुत उम्मीद नहीं दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता वैसे तो महज 11% ही हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि मतदाताओं का ये वर्ग किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री घोषित करने के फैसले को चुनाव में भुनाएगी, बल्कि वो इस बात को भी प्रचारित करेगी कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ने ही राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं। सुभाष मिश्र कहते हैं,
89 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगभग मुझे लग रहा 29 साल हो गए हैं, कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण का नहीं हुआ है। बैकवर्ड हो गए हैं, ठाकुर हो गए हैं, शेड्यूल कास्ट हो गए हैं, सब कास्ट के हो गए, तो ब्राह्मण इधर पिछले कई वर्षों से अपने आप को बिखरा, डिसइंटीग्रेटेड, लीडरलेस महसूस कर रहा है।
कांग्रेस की इस घोषणा से ब्राह्मण वर्ग कितना प्रभावित हुआ है या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कुछ हद तक हतोत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में तो पार्टी के इस फैसले ने जान फूंकने का काम जरूर किया है। इलाहाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फूलचंद दुबे कहते हैं,
ब्राह्मण नेतृत्व कांग्रेस बहुत दिन से प्रतीक्षारत है, उनको मिल नहीं पा रहा है। अगर ये कुल फैक्टर जितने कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के अन्य पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, तो अखिलेश, मायावती या अन्य बीजेपी ने कोई कैंडिडेट अभी घोषित नहीं किया, उनमें सबने साफ सुथरी छवि भी इनकी है।
बहरहाल कांग्रेस के इस फैसले का उसे चुनावी फायदा कितना मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी के इस फैसले ने दूसरे दलों को जरूर बेचैन कर दिया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। जानकारों का ये भी कहना है कि भाजपा पर अब न सिर्फ मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बढ़ेगा, बल्कि ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में करना भी अब उसके लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
इधर उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार चुने जाने के बाद शीला दीक्षित का कहना है कि उनके सामने चुनौती बड़ी है। 1989 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर है और मौजूदा हालात में वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद चौथे नंबर की पार्टी है। हमारे साथी अशोक कुमार ने बात की शीला दीक्षित से और पूछा कि वे कैसे चुनौतियों का सामना करेंगी।
बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा सा स्टेट नहीं है और समय भी हमारे पास सीमित है, लेकिन अब चुनौती को स्वीकार किया है तो इस पर खूब अच्छी तरह से और अपने खूब दबंगी से लड़ेंगे इसको, और इस उम्मीद से लड़ेंगे कि हम अच्छी तरह से हम अपनी पोजीशन को इम्प्रूव ही ना करें, लेकिन ऐसी मुकाम पर पहुंचे कि हम सरकार बनाने लायक बन जाएं।
जी, अभी के सिनेरियो में देखें तो आपकी पार्टी अभी यूपी में चौथे नंबर की पार्टी है, उसको आप जैसा कह रही हैं सरकार बनाने के लायक आप उसको लाना चाहते हैं, क्या कुछ रणनीति है जिस पर अमल करना है?
अपने कार्यकर्ताओं को में जोश लाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि आवाम और जनता जो है ना उसने मायावती की कुल सरकार को भी देख लिया है और अब सपा की सरकार को भी देख लिया, अब बीजेपी से इसलिए हम बड़ी जोरों से लड़ेंगे, अब देखते हैं क्या होता है।
जी, आप दिल्ली में 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, आपने कहा है कि आप बहू हैं यूपी की, लेकिन बाहरी का मुद्दा बनेगा, आप कैसे निपटेंगी?
देखिए, जब मैं दिल्ली में पढ़ी थी तब मुझे बाहर की कहा जाता था, क्योंकि मेरा राजनीतिक करियर जो है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था, तब दिल्ली के लोग भी मुझे कहते थे कि भैया ये तो बाहर की है, लेकिन चुना उन्होंने। असल में लोग इस बात में कम जाएंगे कि कहाँ, और मैं उत्तर प्रदेश की बहू हूँ भाई, वो मेरी शादी वहाँ हुई हुई है, मेरा परिवार वहीं का है, दीक्षित साहब मेरे ससुर जो थे वहीं फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो ये सब चीजों को देखते हुए बाहर की कहां से हो गई मैं।
यूपी में प्रियंका गांधी को लाने की बहुत बात हो रही है, चुनाव में प्रचार में उतारने की बात हो रही है, आपके कहने से वो आएंगी, आप आग्रह करेंगी उनसे?
देखिए, उनके लिए सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाह रहा है उनको, और वो भी चाह रहे हैं, जनता भी चाह रही है, अब वो फैसला करेंगे, जैसा फैसला करेंगे हम लोग देखेंगे, पर ये जनता की आवाज है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज जरूर है।
बुनियादी समस्या आप क्या देखती हैं कांग्रेस के सामने, जो इतने साल से कांग्रेस जिस हालत में उत्तर प्रदेश में रही है, आप क्या देखते हैं, क्या समस्या है?
देखिए, राजनीति ये जो यहाँ की है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी में कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी लंबा लंबा हारते रहते हैं, कभी लंबा लंबा जीतते रहते हैं, तो ये चीजें तो क्योंकि, लेकिन इस वक्त हम लोगों को लग रहा है कि हमारे वर्कर्स में काफी जोश आया है और हम इस विश्वास से जा रहे हैं कि अब की बार हम जीतेंगे।
लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है आपकी।
हाँ, लड़ाई कठिन है, लंबी तो है ही है, कठिन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कठिन लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ जैसे फायरब्रांड नेता हैं, मायावती हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, कुछ रणनीति आपने बनाई इन सब चेहरों को ध्यान में रखे?
बना रहे हैं, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा।
यूपी में विपक्षी पार्टियों से निपटने की नीति बना रही है कांग्रेस, ये कहना है शीला दीक्षित का। उनसे बात कर रहे थे अशोक कुमार। और आपको बता दें जिन श्रोताओं ने अभी अभी रेडियो खोला है कि फ्रांस में लॉरी के जरिए भीड़ पर हुए हमले में 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अब रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल तथागत राय ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी को 16 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा है। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नबाम तुकी की सरकार बहाल हुई है। इस साल की शुरुआत में नबाम तुकी को तब सत्ता से बाहर होना पड़ा था जब उनकी पार्टी कांग्रेस के 21 विधायकों ने बगावत कर भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली। अब अदालत ने नबाम तुकी की सरकार तो बहाल कर दी है, लेकिन क्या उनके पास बहुमत साबित करने के लिए नंबर्स हैं? यही सवाल किया हमारे सहयोगी अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी से।
नंबर कांग्रेस का मेजोरिटी है, कांग्रेस का 45 एमएलए है आउट ऑफ 60
जी, लेकिन वो एमएलए तो आपसे अलग हो गए थे जो सरकार उन्होंने बनाई थी अलग अपनी।
वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद में अभी वो अलग नहीं हो सकता ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लॉक सेट बैक कर दिया है 15 दिसंबर तक कर दिया है, तो वो लोग सब कांग्रेस एमएलए हो गया, अभी वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगा।
लेकिन वो एमएलए आपके साथ आने को तैयार हैं दोबारा? आपकी उनसे कोई बात हुई है?
हम सब से कॉन्टेक्ट में हैं, कांग्रेस एमएलए हैं, अभी सीएलपी मीटिंग बुलाएंगे तो सब आ जाएंगे। अलग जाने के रास्ता होने से अलग होगा ना, अलग जाने के रास्ता है ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी का एमएलए है तो पार्टी में रहना पड़ेगा।
लेकिन वो पहले तो बाहर चले गए थे ना कांग्रेस से?
बाहर चला जाने मेंबरशिप लूज होगा ना, तो एमएलए नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा?
तो आपको पूरा भरोसा है कि आपकी सरकार को बहुमत मिल जाएगा?
बहुमत मैं हासिल करूंगा, हाईकमान का पार्टी हाईकमान का गाइडेंस है, अभी हम लोग पार्टी को फिर मौजूद करेगा।
क्या आप ये भी सोच रहे हैं कि फिर से चुनाव में जाने का अच्छा तरीका होगा कि फिर से नए विधायक चुन लिए जाएं, जिस तरह एक संकट जिस तरह से पैदा हुआ?
नहीं, हम लोग के पास मेजोरिटी है, पब्लिक ने चुन के भेजा है, पर पब्लिक को क्यों तकलीफ देगा, वो भी जनता फैसला करके भेजा हुआ है, हम तो जनता को पूछ के जाएंगे, फैसला करेंगे। जब एमएलए लोग चुनाव में नहीं जाना चाहता है तो हम चुनाव में क्यों जाएं?
तो आपको गवर्नर की तरफ से कोई टाइम मिला है बहुमत साबित करने के लिए?
अभी गवर्नर का चिट्ठी तो अभी मिला नहीं है, ऐसे खबर तो सुना है, वो हम समय बहुत कम देने का बात कर रहे हैं, बोला तो हम रिक्वेस्ट करेंगे।
पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से गवर्नर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या आप भी मांग कर रहे हैं कि गवर्नर को हटाया जाए, रखा जाए?
गवर्नर को रखना नहीं रखना तो सरकार का काम है, और हम इस जितना घटना हो गया उसका खिलाफ हो गया, इतना करने के बाद तो खुद भी डिसीजन लेना चाहिए, जो लोग ने जो खबर को देखा है सुना है उस हिसाब से वो अपना फैसला लेना चाहिए। बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने इन्वॉल्व किया है, वो गवर्नर को मिसयूज किया है, और हमारा केंद्र मंत्री लोग है, सब लोग इन्वॉल्व किया है।
आप मांग नहीं कर रहे हैं उन्हें हटाने की फिलहाल?
वो तो हम बोल दिया है मीडिया में, पकाली बोल दिया था, पूछा था, हम बोला कि वो तो सबसे पहले वही काम होना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया।
तो नबाम तुकी दावा कर रहे हैं कि उनके पास है नंबर्स, उनसे बात कर रहे थे अशोक कुमार। भारत प्रशासित कश्मीर में जारी तनाव को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच राजनयिक तल्खी बढ़ती जा रही है। भारत ने जहां इसे अपना अंदरूनी मामला बताया है, वहीं पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर में भी कश्मीर घाटी में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों के मारे जाने की निंदा की है। वहीं मुसलमान देशों के संगठन IOC ने भी कश्मीर में हिंसा की निंदा की। सुनिए अमरीश द्विवेदी की ये रिपोर्ट।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप कल अपनी हफ्तेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान जो सवाल सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आए, वो भारत प्रशासित कश्मीर से ही जुड़े थे। पिछले दिनों घाटी में पुलिस मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत और उसके बाद विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों 30 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद वहां तनाव है। पाकिस्तान ने कश्मीर के हालात को संयुक्त राष्ट्र में उठाया है और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को भी अपने रुख से अवगत कराया है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और उसे इस मुद्दे पर किसी से नसीहत नहीं चाहिए।
फर्स्ट, टेररिज्म इज टेररिज्म, No amount of parsing or justification on the part of Pakistan is going to change that.
सबसे पहली बात, आतंकवाद आतंकवाद है. पाकिस्तान इसे कितना भी जायज ठहराए, लेकिन ये बात नहीं बदलेगी. दूसरी बात, अपने अंदरूनी मामले सिर्फ हमें देखने हैं. कोई पक्ष अगर इसमें दखल देने का प्रयास करता है या इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है तो उससे हकीकत नहीं बदल जाती. और तीसरी बात, दुनिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश आतंकवाद को सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है और आतंकवादी गुटों को शरण देता है और मानवाधिकार का उल्लंघन करता है. विकास स्वरूप के इन शब्दों का जवाब तुरंत पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा,
इट इज द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हु आर इंडल्जिंग इन स्टेट टेररिज्म इन आईओके. They are terrorizing the population.
भारतीय सुरक्षा बल ही भारतीय कश्मीर में सरकारी आतंकवाद फैला रहे हैं. वो वहाँ रह रहे लोगों में दहशत फैला रहे हैं. ये निंदनीय है कि वो एम्बुलेंस और अस्पतालों पर भी हमले कर रहे हैं और ऐसे में घायल लोगों को इलाज के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं. ये थे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया के शब्द. इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों के मारे जाने की निंदा की है. उन्होंने कहा कि दुनिया कश्मीरियों की इच्छा और उनके संघर्ष को स्वीकार करे. दूसरी तरफ पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC के महासचिव इयाद अमीन मदनी ने कश्मीर में हुई मौतों की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि वो आज़ादी के लिए कश्मीरियों के वाजिब संघर्ष को आतंकवाद का नाम दे रही है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर मुसलमान देशों के संगठन OIC का बयान उनकी नज़र में आया है, लेकिन भारत इसको कोई तवज्जो नहीं देता. जब उनसे पाकिस्तान के साथ बातचीत की संभावनाओं पर पूछा गया तो उन्होंने कहा,
इंडिया हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम डायलॉग विद पाकिस्तान. हाउएवर इट इज इनकम्बेंट अपॉन पाकिस्तान.
भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत से कभी नहीं भागा है, लेकिन ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत के लिए सही माहौल बनाए ताकि रचनात्मक बातचीत हो सके. जैसा कि हमने बार बार कहा है, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के शब्द. अमेरिका ने भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान और कश्मीर में बातचीत होनी चाहिए, और जहां तक बात कश्मीर मुद्दे के समाधान की है तो अमेरिका की नीति इस बारे में नहीं बदली है. इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून कह चुके हैं कि कश्मीर में सभी पक्षों को ज्यादा से ज्यादा संयम दिखाना चाहिए ताकि वहां और हिंसा न हो.
ये थे अमरेश द्विवेदी. और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का. सीधे चलते हैं श्रीनगर माजिद जहांगीर के पास. माजिद, ये बताइए कि क्या सुर्खियां हैं आज के समाचार पत्रों की.
देखिए, आज के जितने भी अखबार छपे हैं तो सब में जो कश्मीर में अनरेस्ट चल रहा है पिछले 6 दिनों से, तो सभी अखबारों ने प्रमुख तौर इस अनरेस्ट को जो है अपने पहले पन्नों पे जो है जगह दी है. और जितने भी अखबार है उनके एडिटोरियल और ओपिनियन पीस जो है सभी अखबार के और इसी हवाले से हैं, बुरहान वानी की किलिंग और कश्मीर में जो अनरेस्ट है और कश्मीर में की जो का एडिटोरियल है, तो उसमें उसके एडिटोरियल की जो सुर्खी है वो कन्फेस इज रॉन्ग. और उसमें ये जो छोड़ उस एडिटोरियल में बताया गया है कि दिल्ली 36 लोगों के मरने के बाद भी जो है दिल्ली अभी तक जागी नहीं है और कश्मीरियों को एड्रेस करने के बजाय यहाँ पे मजीद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की कुमक भेजी गई. और इसी तरह से दूसरे अखबार में भी जो ओपिनियन पेसेस लिखे गए हैं तो वो बुरहान वानी के ही हवाले से लिखे गए हैं. और जैसे कि ग्रेटर कश्मीर में एक ओपिनियन पीस ये लिखा गया है कि द बुरहान फिनोमेना, और इसमें ये लिखा गया है कि सरकार जिस तरह से इस पूरे मसले को डील कर रही है वो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ के आंसू हैं उस तरह से डील कर रही है इस मसले को, जबकि इस मसले को एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में डील करने की जरूरत
जी,
है.
जी, तो, जी, समाचार पत्रों की इस समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये थी श्रीनगर से माजिद जहांगीर. और अब समय है विशेष रिपोर्ट का. वो कहती हैं कि उनका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि स्टेज पर उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं. वो स्टेज पर पहली बार गई थीं. जब वो स्टेज के किनारों पर पहुंची तब जाकर अपनी गुरु से उन्हें संदेश मिला, बेटा दिल खोल कर नाचो. आपको सुनकर यकीन करने में मुश्किल होगी, लेकिन हकीकत में नर्तकी की उम्र 46 है और गुरु 71 साल की है. आजकल 40 से ज़्यादा उम्र की बहुत सी महिलाएं डांस करना सीख रही हैं. हाल ही में बेंगलुरु में महिलाओं के एक समूह ने जिनकी उम्र 46 से 51 थी स्टेज पर डांस किया. बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट.
मागारी सा नी दपा आठ साल पहले स्मिता प्रभु 38 साल की थी जब उन्होंने डांस सीखना शुरू किया जयश्री मुंडकूर से। मोहिनी आटम केरल का परंपरागत डांस फॉर्म है जो जयश्री मुंडकूर सिखाती हैं। कुछ महीनों पहले उन्होंने स्मिता प्रभु सरी के ज़्यादा उम्र की महिलाओं के स्टेज प्रदर्शन की तैयारी शुरू करवाई। स्मिता प्रभु कहती हैं,
मैं पहले आइटम में थी तभी माय हार्ट वाज बीटिंग सो फास्ट, मैंने सोचा सबको दिखेगा तो मैं तो एकदम सीरियसली फ्राउन कर रही थी, बट जयदी विंग्स में बैठी हुई थी और वो हमको वहां से प्यार भी और तालम भी दे रही थी, तो मैं जब विंग्स में आई तो उसने कहा बेटा आप ही का दिन है, अभी भूल जाओ सब, नाचो दिल खोल के नाचो। तो उसके बाद अगले दो आइटम में जो थी मैं थोड़ा आई कुड मैनेज टू स्माइल एंड, बट पहली बार हाँ आई एम 46 एंड इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन स्टेज, 200 लोग थे तो कुछ दिख नहीं रहा था लाइट की मुझे, बट स्टिल टू नो दैट देयर वर पीपल वाचिंग वाज क्वाइट, मुझे पहले डर लगा।
स्मिता प्रभु की बातों पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, उनके गुरुजी यानी जयश्री मुंडकूर ने खुद भरतनाट्यम सीखना शुरू किया था शादी के बाद जब उनकी उम्र 25 साल की थी और 71 साल में उन्होंने अपनी डांस स्कूल नृत्यामी शुरू की है। दरअसल स्मिता प्रभु जयश्री मुंडकूर के पास अपनी बेटी को भरतनाट्यम सिखाने के लिए गई थी जब उनको पता चला कि उन्हीं की उम्र वाले महिलाएं उनके पास मोहिनी आटम सीख रही हैं। वे कहती हैं,
एक तो मेरा कम से कम 20-25 किलो कम हुए हैं, बट ऑफकोर्स 5-6 साल से, नॉट एक साल में, धीरे धीरे वो एक वो है। दूसरा मुझे आस्थमा भी होता था बहुत, हम बैंगलोर के रहने वाले हैं तो यहाँ पार्थी में एक लोकल ग्रास होता है उससे मुझे वीजिंग होता था बहुत सारा, तो उन्होंने पहले आई थिंक फर्स्ट 1-1.5 ईयर मैंने कुछ ज्यादा डांस नहीं किया, इट वॉज जस्ट मूवमेंट्स एंड स्ट्रेचिंग एंड वैसे सब ब्रीदिंग, उसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरा आस्थमा तो बिल्कुल अभी है ही नहीं। एंड हफ्ते में दो बार हम करते हैं 4-5 घंटा मीन्स क्लास में।
डांस करने से सिर्फ स्मिता प्रभु को फायदा नहीं हुआ, जब डॉक्टर अर्चना महेंदाले जयश्री मुंडकूर के पास अपनी बेटी के साथ गईं तो वे 35 साल की थी। डॉक्टर महेंदाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या टिस में प्रोफेसर हैं। वे कहती हैं,
सब काम करते हैं, सभी महिला विवाहित हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे लोग का डिमांड है, हस्बैंड की डिमांड है, ऑफिस में ऑफिस का डिमांड है, तो ये सब उन लोग संभाले। हमारे पास उन लोग हफ्ते में 2 दिन आते हैं और हर क्लास 1-1.5 घंटा तक होती है।
डॉक्टर वंदना नाडिक नायर 41 साल की थी 6.5 साल पहले जब वे डांस सीखना शुरू की। डॉक्टर वंदना महिला उद्यमी हैं और अपनी 3 कंपनियां चलाती हैं। वे कहती हैं,
जब मैंने शुरू किया मेरा बॉडी इतना इट वॉज लाइक अ प्लैंक ऑफ वुड, हिलता ही नहीं था। तो जो हम लोग कहते हैं आंदुलिका, जो आपने नोटिस किया होगा ये जो स्विंग मूवमेंट है टॉर्सो का, साइड टू साइड फ्रंट से हम आंदुलिका कहते हैं, वो मेरे शरीर से तो होता ही नहीं था। मैंने 5 महीने आंदुलिका करवाया मेरे से जयमा ने। आजकल देखती हूँ जो नए लोग शुरू कर रहे हैं आज, वो तो 1 महीने में आंदुलिका यू नो पूरा निपटा लेते हैं एंड दे आर कंटिन्यू।
जयश्री मुंडकूर समझाती हैं,
परंतु अगर उनको टाइम ही नहीं मिलता कंपटीशन है काम के फैमिली के तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझती हूँ ये बात बहुत डेफिनेटली। आज देखिए उन लोग में से 3 लड़कियां थे जो सारे आइटम्स किए और बैक टू बैक किए, उनके इसके लिए स्टेमिना भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए और निपुणता मूवमेंट में भी चाहिए। फिर उन लोग ने वर्णम किया जिसमें उन लोग को एक्सप्रेशनल डांस भी करना पड़ा। और
बेंगलुरु में महिलाओं में बड़ा डांस का शौक, ये थी इमरान कुरैशी की विशेष रिपोर्ट। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के नीस शहर में बास्टिल डे के आयोजन में भीड़ पर एक लॉरी के चढ़ जाने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय अधिकारियों ने इन लोगों के मारे जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इस बड़े हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक लॉरी से बंदूकें और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मीडिया में आ रही रिपोर्ट के मुताबिक प्रोमिनेड में आतिशबाजी के दौरान ये घटना हुई है। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला इस वक्त पेरिस में एक आपात बैठक कर रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ें सुनी थीं और ट्रक चालक को पुलिस ने गोली मारी है जिससे उसकी मौत की खबर है। दक्षिण सूडान के जूबा शहर से 156 भारतीयों को सुरक्षित निकालकर भारत वापस लाया गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में दोबारा 8 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।